हरे कृष्णा। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रील प्रभुपाद जी के प्रमुख शिष्यों में से एक हिज ग्रेस दीननाथ प्रभु। तो प्रभु जी इस्कॉन मूवमेंट से जुड़े थे सन 1968 में, और सन 1969 में प्रभु जी का दीक्षा हुआ। और जब श्रील प्रभुपाद पहली बार अपने विदेशी भक्तों को भारतवर्ष लेके आए थे, तो प्रभु जी उन 13 भक्तों में से थे जो कि प्रभुपाद जी के साथ भारत में आए थे। और प्रभु जी वैसे एक रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी हैं, अभी वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, और बहुत ही लंबे अंतराल के बाद दोबारा भारतवर्ष में आए हैं। और इस्कॉन पंजाबी बाग में प्रभु जी पहली बार ही आए हैं, तो हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमें प्रभु जी का सानिध्य मिलेगा। तो एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने फोन को साइलेंट मोड या स्विच ऑफ कर दें और प्रभु जी के संग का लाभ। तो प्रवचन इंग्लिश में होगा और साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेशन भी होगा इसका।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। So I'll read texts 41 and 42 and then we'll chant 43 together.
पहले हम श्लोक संख्या 41 और 42 का अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद साथ मिलकर 43 श्लोक का उच्चारण करेंगे।
दुर्वासु चोदिता पित्रा ध्रुयाश्चनुश्च भारत प्रत्याचक्युर अधर्मज्ञा ह्यान्नित्या नित्य बुधायः। ट्रांसलेशन। ओ महाराज परीक्षित, Yayati similarly requested his son Turvasu, Durya, and Anu to exchange their youth for his old age. But because they were unaware of religious principles, they thought that their flickering youth was eternal, and therefore they refused to carry out their father's order.
Anuvad. He Maharaj Parikshit, Yayati ne isi tarah anya putron se, अर्थात दुर्वसु ध्रुयु तथा अनु से वृद्धावस्था के बदले अपनी जवानी देने के लिए निवेदन किया, लेकिन वे सभी अधर्मज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उनकी नाशवान जवानी शाश्वत है। अतएव उन्होंने अपने पिता के आदेश को मानने से मना कर दिया।
अपृच्छत् तनयम् पूरम् वायसोनम् गुणादीकम् न त्वम् अग्राजवत् वत्स माम् प्रत्याख्यातुम् अर्हसि। King Yayati then requested Puru, who was younger than these three brothers but more qualified, "My dear son, do not be disobedient like your elder brothers, for that is not your duty."
श्लोक संख्या 42 अनुवाद। तत्पश्चात राजा ययाति ने पुरु से, जो अपने इन तीनों भाइयों से उम्र में छोटा था किंतु अधिक योग्य था, इस तरह निवेदन किया। हे पुत्र, तुम अपने बड़े भाइयों की तरह अवज्ञाकारी मत बनो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है।
So everyone please repeat.
So सभी साथ साथ बोले।
श्री पुरुरुवाचा कोनु लोके मनुष्येन्द्रा पितुर आत्मा कृतः भूमाम प्रतिकर्तुम शमो यस्य प्रसादात् विन्दते Param Sri Puruvacha Kuno Loka Manushindra Hitur Atma Krita Pumam Pratikartum Shamo Yasya Prasadat Vindate Param Shri Pururuvacha Konu Loke Manushindra Pitur Atma Krita Pumam Prati Kartum Shamo Yasya Prasadat Vindate Param Shri Puruvacha Shri Purura Puru said
Puru ne kaha
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 What?
Kya
Nu
Nu
Indeed
Isande
Loke In this world
Isansar me
Manusha Indra O your majesty, best of human beings.
Manushyo me shresht, he maharaj.
Pitu, the father.
Pita.
Atma kartaha. One has given this body.
Is sharir ko dene wala.
Pumam.
Vyakti.
Parti kartum. To repay.
Chukta karne ke liye.
Shama is able.
Samarth hai.
Yasya of whom?
Jiski.
Prasadat by the mercy.
Kripa se.
Vindate one enjoys.
Bhokta hai.
Param superior life.
Shresht jivan.
Puru replied, O your majesty, who in this world can repay his debt to his father? By the mercy of one's father, one gets the human form of life, which can enable one to become an associate of the Supreme Lord.
Puru ne uttar diya, He Maharaj, aisa kaun hoga jo apne pita ke rin se urin ho sake? Manushya ko pita ki hi kripa se manav jivan prapt hota hai. जिससे वह भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है।
The father gives the seed of the body, and this seed gradually grows and develops until one ultimately attains the developed human body.
पिता शरीर का बीज दाता है, और यह बीज क्रमशः विकसित होकर मनुष्य का विकास विकसित रूप धारण करता है।
With consciousness higher than that of the animals.
जिसमें पशुओं की अपेक्षा उच्चतर चेतना होती है।
In the human body, one can be elevated to the higher planets, and furthermore, if one cultivates Krishna consciousness, one can return home back to Godhead.
इस मनुष्य शरीर से मनुष्य स्वर्ग जा सकता है, और यदि कोई कृष्ण भावना अमृत का विकास करे, तो वह भगवत धाम वापस जा सकता है।
This important human body is obtained by the grace of the Father, and therefore everyone is indebted to his Father.
यह महत्वपूर्ण मानव शरीर पिता के अनुग्रह से प्राप्त होता है, अतएव हर व्यक्ति अपने पिता का ऋणी होता है।
Of course, in other lives, one also gets a father and mother. Even cats and dogs have fathers and mothers.
निसंदेह, दूसरी योनियों में भी उसे पिता माता मिलते हैं।
But in
यहां तक कि कुत्ते बिल्लियों के भी माता पिता होते हैं।
But in the human form of life, the father and the mother can award their son the greatest benediction by teaching him to become a devotee.
किंतु मनुष्य जीवन में पुत्र के माता पिता जो सबसे बड़ा वर दे सकते हैं, वह है उसे भक्त बनने की शिक्षा।
When one becomes a devotee, he achieves the greatest benediction. Because he completely averts the repetition of birth and death.
जब कोई भक्त बन जाता है, तो उसे सबसे बड़ा वर प्राप्त होता है, क्योंकि वह जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है.
Therefore, the father who trains his child in Krishna consciousness is the most benevolent father in this world.
अतएव जो पिता अपनी संतान को कृष्ण भक्त बनने का प्रशिक्षण देता है, वही इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी पिता है.
It is said, जनमे जनमे सबै पतित माता पाय कृष्ण गुरु नाहि मिले बज हरि ए. Even everyone gets a father and a mother, but if one gets the benediction of Krishna and Guru, he can conquer the material nature and return home back to Godhead.
ऐसा कहा गया है, जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए कृष्ण गुरु नहीं मिले भज हरि आए. माता पिता तो हरेक को मिलते हैं, किंतु यदि मनुष्य को कृष्ण तथा गुरु का वर प्राप्त हो जाए तो वह भौतिक प्रकृति को जीत सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है.
थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी टू सिट विद यू टुडे एंड डिस्कस द.
आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं कुछ चर्चा कर सकूं.
टू डिस्कस द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अस By Lord Krishna coming down through the parampara.
कि मैं भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए निर्देशों जो कि गुरु परंपरा से नीचे आ रहे हैं उन पर कुछ चर्चा कर सकूं.
So this is very instructive. Here we understand because we understand that the way to get knowledge and understanding is through the proper authorities.
तो ये बहुत ही उपदेशजनक है कि हम यहाँ पे समझते हैं कि वास्तविक तरीका जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो है अधिकारी गणों से सुनना.
So for the human being, the most important immediate authority is considered to be the father.
और एक मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उनके पिता माने जाते हैं.
Because it's the father that gives the seed to make possible for the body to develop.
क्योंकि पिता ही बीज का दान देते हैं जिससे मनुष्य शरीर विकसित होता है.
Then after the father, there's the mother, because the mother she nurtures and develops the seed.
पिता माता को बीज देते हैं और माता उस बीज का पोषण करती हैं ताकि शरीर बन सके.
So similarly, the original father is Bhagavan Sri Krishna.
इसी रूप से वास्तविक पिता भगवान श्री कृष्ण हैं आदि.
And the mother is the Vedas.
और माता हैं शास्त्र वेद.
So the human, there are different kingdoms upon the earthly planet.
इस धरती पे अलग-अलग राज्य हैं.
We have the mineral kingdom. We have the vegetable kingdom, and we have the animal kingdom, and we have human kingdom.
अलग अलग यूनियां हैं कि हमारे पास पेड़ पौधे हैं जो और मनुष्य हैं पशु हैं.
So the mineral kingdom is distinguished as that it's immovable and it cannot reproduce.
जो धातु होती हैं वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती और एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकती.
The plant kingdom is immovable, but it can reproduce.
जो पेड़ पौधे होते हैं वो इधर उधर नहीं जा सकते लेकिन संतान उत्पन्न कर सकते हैं.
The animal kingdom is movable and it can reproduce.
जो पशु होते हैं वो इधर उधर भी जा सकते हैं और संतान भी उत्पन्न कर सकते हैं.
And also the human kingdom is movable and it can reproduce.
और जो मनुष्य होते हैं वे भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं और इधर उधर जा सकते हैं.
So if both the animal and the human's kingdom are movable and they can reproduce, what is the distinction between the human and the animal?
तो दोनों पशु ही और मनुष्य दोनों ही इधर उधर जा सकते हैं और संतान उत्पन्न कर सकते हैं तो इन दोनों में क्या भेद हुआ
So the distinction here is given to us that the human beings that they can understand ultimately where they come from they can understand their source their original father God
जो भेद है वो ये है कि मनुष्य ये समझ सकते हैं कि वे वास्तविकता में कहां से आए हैं और अपना असली स्रोत भगवान को जान सकते हैं
Yet if human beings do not utilize this facility, then they are no different than the animals.
और यदि कोई human, कोई मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो उसको पशु ही समझना चाहिए.
Well, another name for God is Pashunampati, or the Lord of the beasts, the Lord of the animals.
भगवान का एक और नाम है पशुनामपति. जो इसका अर्थ है कि जो पशुओं के स्वामी हैं
So the distinction is that the human beings can understand that we have a lord
तो भेद यह है कि मनुष्य समझ सकता है कि हमारे भगवान होते हैं हमारा कोई स्वामी होता है
But this understanding is not something which is done by force like with animals you force them to understand that there is a lord or a master
परंतु इसका फर्क यह है कि पशुओं को तो जोर जबरदस्ती डंडे से सिखा दिया जाता है कि ये आपके स्वामी हैं लेकिन मनुष्यों के केस में ऐसा नहीं है
But God does not force us to understand that we are part of him but he gives us information and instruction and because we have this ability we can be responsible to respond to that information and then understand that the Lord is our master
मनुष्यों के संदर्भ में भगवान आज्ञा और शिक्षा देते हैं और जिसके माध्यम से क्योंकि मनुष्य जो हैं उनकी विकसित बुद्धि है तो वो अपनी बुद्धि से ये जिम्मेदारी लेते हैं और समझ सकते हैं कि उनके वास्तविक स्वामी भगवान हैं
In the Bhagavad Gita, Lord Krishna, he says that aham bija praja pitaha And I am the seed giving father of all living entities.
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवात्माओं का बीज देने वाला पिता हूं।
But animals, they cannot understand who the seed giving father is. They may understand that this is my pita, this is my mata, but they cannot understand this idea of the generating principle which created their bodies.
पशुओं को ये बीज देने वाले पिता या फिर संतान उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो समझ नहीं आ सकता उनको ज्यादा से ज्यादा ये समझ में आ सकता है कि ये मेरी माता है ये मेरे पिता हैं
एंड बिकॉज़ ऑफ दिस एबिलिटी ह्यूमन बीइंग्स वी हैव दिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर सीड गिविंग फादर वी आल्सो हैव द पोटेंशियल इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ टू एलिवेट आवरसेल्फ टू हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ
क्योंकि मनुष्य जीवन में ये समझ या सुविधा है कि हम अपने बीज दाता पिता को समझ सकते हैं तो इसीलिए हमारे हम में ये भी सुविधा है कि हम अपना जीवन उत्कृष्ट योनियों में लेके जा सकते हैं
So we from this human life we can go to up into a swarga or higher planets and but we also understand there another name for Bhagavan is Devanampati So he's also the seed giving father of the devatas as well.
हम मनुष्य जीवन से देव लोक भी जा सकते हैं स्वर्ग लोक भी जा सकते हैं और हम ये जानते हैं कि भगवान का एक नाम देवनामपति भी है जिसका अर्थ है कि वे देवताओं के भी बीज दाता पिता हैं
And beyond the world of the devas there's the spiritual sky the pure brahman and in that spiritual sky there are many many planets and The source of all those planets and living entities there is Bhagavan Shri Krishna.
और देव लोक से भी ऊपर आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ पर ब्रह्म ज्योति और भगवान के अनंत वैकुंठ लोक हैं, और वहाँ पे जितने भी लोक हैं, ब्रह्म ज्योति और जितने भी जीवात्मा हैं, सबके स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं।
So ultimately, by hearing from the proper source for instance I said before that the Veda is considered to be the mother And the spiritual master gives us the words of the mother of the Vedas.
तो अंततोगत्वा सही स्रोत से श्रवण करने से, जैसे कि हमने पहले बताया कि जो वेद हैं उनको माता के समान समझा जाता है, और जो गुरु हैं वो हमें वेद रूपी माता के जो शब्द हैं वही दोहरा के सुनाते हैं.
And in this human form of life, when we hear the words of the spiritual master, we're able to understand, yes, who my father is.
इस मनुष्य जीवन में अगर हम गुरु आध्यात्मिक गुरु के शब्दों को सुनते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हाँ वास्तविकता में हमारे पिता कौन हैं.
And the guru is giving us the exact message and true understanding of who our source or what our source is.
तो जो गुरु हैं वो हमको बिल्कुल सही सटीक समझ प्रदान करते हैं और सही बताते हैं कि हमारे स्रोत कौन हैं.
And this book here, Srimad Bhagavatam, is considered to be the topmost literature of all the Vedic wisdom.
ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, इसको सारे वैदिक साहित्य का सबसे उत्कृष्ट साहित्य या ग्रंथ बताया जाता है.
Of course, we have many, many scriptures, and they're all very, very important, and they're very, very valuable, honorable, and they should be given respect.
और दूसरे भी अनेक ग्रंथ हैं जो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनका भी बहुत ही अच्छे से सम्मान किया जाना चाहिए.
So we honor and respect the Bible, the Quran.
तो हम कुरान, बाइबल, इन सभी ग्रंथों का भी आदर करते हैं.
And scriptures of all religions.
और जितने भी अन्य धर्म हैं उनके भी ग्रंथों का आदर करते हैं.
But what is that so special to us about the Srimad Bhagavatam?
परंतु भागवतम की क्या विशेषता है?
One thing is that the main thing is that this information in the Bhagavatam was given to us by Shukadev Goswami.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भागवतम का ज्ञान है ये हमें शुकदेव गोस्वामी जी ने दिया है.
And Shukadev Goswami was very highly situated in Brahman realization.
और शुकदेव गोस्वामी ब्रह्म साक्षात्कार में बहुत ही उच्चतर स्तर पर स्थित थे.
And he had studied all of the different scriptures under his father Vyasadeva, all the scriptures of all different people of all over the world.
और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव जी के निर्देशन में दुनिया के जितने भी अलग-अलग ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन किया था.
And ultimately he came to the conclusion that the best scriptures that which describes directly the complete glories of Bhagavan himself.
और अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे उत्तम ग्रंथ वो है जो सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करता है.
So why this Bhagavatam is so important is because it's strictly about the glories of Bhagavan Krishna himself.
तो भागवतम इतना विशेष क्यों है? क्योंकि ये केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के गुणगान पर ही केंद्रित है.
Bhagavan Krishna says, I am the seed-giving father. So this information in the Bhagavatam gives us the direct, full information, knowledge about our father.
Bhagavan Shri Krishna कहते हैं कि मैं बीजदाता पिता हूँ. तो ये भागवतम हमको भगवान का पूर्ण और साक्षात सटीक ज्ञान देता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण बीजदाता पिता हैं.
Other scriptures give us hints and ideas about who our father is and what our father might be like and some different ideas about him, but they don't give us a complete full identification knowledge of who the father is.
अन्य ग्रंथ जो हैं वो हमारे पिता के प्रति लक्षित करते हैं कुछ अलग-अलग लक्षण और उनके सिम्टम्स बताते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान बिल्कुल सीधा-सीधा पूर्ण समझ नहीं प्रदान करते जैसे कि भागवतम में बताया गया है.
Therefore the Bhagavatam is considered to be the essence of all the scriptures.
इसलिए श्रीमद् भागवतम को सारे शास्त्रों का सार बताया गया है.
And the knowledge from the Bhagavatam is handed down very carefully from one master to another master to another master all the way to our point in time right here.
उपदेश बहुत ही ध्यान पूर्वक एक गुरु से दूसरे शिष्य और फिर उनके शिष्य को दिया गया है और आज जो हम सुन रहे हैं हम तक पहुंचा है।
It's just like if you order a package from New York City through Amazon, then that package, it comes by, it's shipped from New York City, it gets on an airplane, then it comes here to Delhi, and then a courier delivers the package to you.
ये उसी प्रकार है कि जिस प्रकार आप मान लीजिए कि आपने न्यूयॉर्क शहर से कोई अपना चीज मंगाया है Amazon वेबसाइट के थ्रू, तो Amazon क्या करेगा कि वो पहले उसको उस पैकेज को हवाई जहाज में रखेगा, फिर हवाई जहाज दिल्ली आएगा, फिर वहां से कोरियर वाला उठाएगा और हम तक सही सलामत रूप से उसको डिलीवर पहुंचाएगा।
And even though along the way many agents have had in hand in delivering that package unto you, ultimately you know that package came from New York City.
और बीच में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग लोग उस पैकेज को आगे आगे पहुंचाने में सहयोग कर रहे हो, लेकिन अंत में तो सिर्फ आपको ही पता है कि वो जो पैकेज है न्यूयॉर्क से पहुंचा है।
So when you get your package, you think you might even say to your friends, "Oh, my package just came from New York City."
और जब आपको अपना पैकेज तो आप अपने ये मैं मेरा जो है ये पैकेज न्यूयॉर्क से अभी अभी जिनको भगवान श्री कृष्ण ने बद जीव तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए नियुक्त किया है और अधिकार प्रदान किया है।
It's not that just anyone can take the information of Lord Krishna and then claim to be the agent to deliver the message.
ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान लेकर अपने अपने को उनका एजेंट बोलने लगे और उनका ज्ञान दूसरों को देने लगे।
One has to be authorized directly by Bhagavan himself.
उसको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अधिकरण प्राप्त होना आवश्यक है।
And what is that authorization? Krishna tells Arjuna in the Bhagavad Gita how to become an authorized agent.
तो वो अधिकारी बनना या भगवान से ये authorization प्राप्त करने का क्या अर्थ है?
And Krishna, he describes many, many qualifications of different saints and sages and people who have different qualifications in the material and spiritual world.
और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही विस्तार से बताते हैं कितने अलग अलग प्रकार की योग्यताएं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों में होनी चाहिए।
But Krishna says that if you want to work directly for me, then you must give up your occupational aspirations to work for any other organization.
तो भगवान कहते हैं अगर आप सीधा सीधा मेरे लिए कार्य करना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाएं दूसरी संस्थाओं में कार्य करने की इच्छाओं को त्यागना होगा।
Just like you cannot work for the delivery man cannot work for Amazon and FedEx at the same time.
जिस प्रकार एक पोस्टमैन अमेज़न कंपनी और FedEx कंपनी दोनों के लिए एक साथ कार्य नहीं कर सकता।
So Krishna says that in order to deliver my message completely, purely, then he says, Sarvadhaman Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Just give up everything else and surrender and work for me only.
इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मेरा संदेश का प्रचारक बनना चाहते हैं, डिलीवरी मैन बनना चाहते हैं, तो आप सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बाकी सारी कंपनियों को छोड़ के मेरी कंपनी के लिए ही काम कीजिए।
एंड दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल बिकॉज़ वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर और समवन एल्स इज वर्किंग फॉर अनदर कॉर्पोरेशन देन देयर लॉयल्टी इज स्प्लिट।
ये बहुत ही आसान है समझना लॉजिकली भी कि एक व्यक्ति दो कंपनियों के लिए काम करेगा तो वफादारी नहीं निभा पाएगा।
You might not say, you might say that, no, Krishna is not the seed-giving father.
कोई कह सकता है कि नहीं नहीं कृष्ण बीज दाता पिता नहीं है।
I work for Durga, I work for Kali, I work for Shiva, And they're the original source of everything.
मैं तो दुर्गा कली और शिवजी के लिए कार्य करता हूँ और वही सबसे स्रोत हैं हर चीज के.
So Krishna says, if you want to understand this idea that I am the Father, if you want to fully understand this, then you must work entirely for me only.
तो भगवान कहते हैं कि अगर आप ये समझना भी चाहते हैं कि मैं ही बीजदाता पिता हूँ, मैं ही सब चीजों का स्रोत हूँ, तो आपको केवल और केवल पूर्ण रूप से मेरे लिए कार्य करना होगा.
Krishna is not trying to threaten or punish anything like that. He's just stating the fact that if you work for this corporation, then you can understand the full, you can receive the full benefits of working for me, which is to understand how I am the seed-giving Father.
भगवान किसी को कुछ डरा धमका नहीं रहे हैं, वो तो केवल तथ्यों को प्रकट कर रहे हैं. भगवान कह रहे हैं अगर आप मेरी कंपनी के लिए कार्य करेंगे तो फिर पूर्ण रूप से कार्य करने से आपको वास्तविक इसका लाभ प्राप्त होगा कि आप समझ पाएंगे कि मैं ही बीजदाता पिता हूं.
Otherwise, you won't clearly understand this idea.
नहीं तो आप स्पष्ट रूप से इस विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे.
It's just like say there's a child born in the family and people have different opinions. One auntie, she might say this, another uncle might say this. They say, well, that's your father, that's your father, that's your father to the little child.
ये उसी प्रकार से है कि मान लीजिए एक परिवार में एक संतान उत्पन्न हुई है, परंतु सभी रिश्तेदारों के अलग अलग मत हैं. एक माता जी कहती हैं कि वो आपके पिता हैं, दूसरे अंकल जी कहते हैं कि वो आपके पिता हैं. तो इस प्रकार से जो जो पुत्र है वो बिल्कुल चकरा हुआ है.
But when the child actually hears from the mother, hey, son or daughter, this is your father, then the child knows exactly who the father is.
और फिर वो अपनी माता के पास जाता है और जब माता उनको बताती हैं कि ये आपके पिता हैं, तो फिर वो निश्चयात्मक हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये मेरे पिता हैं.
So when we hear from those who are directly working for Krishna and they tell us that Krishna is the seed-giving father, we can actually then come to understand and realize what they mean by that.
परंतु इसका यही अर्थ है कि जब हम उन लोगों से श्रवण करते हैं जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमको समझ में आने लगता है या उस साक्षात्कार होता है कि हाँ कि इस बात जो वो कह रहे हैं उसका क्या अर्थ है.
Otherwise, we generally know that Krishna is God, yes, and you know, we appreciate like that. But we don't, may not fully understand until we hear from the proper source that Krishna is God.
नहीं तो हमको थोड़ा थोड़ा अनुमान या कुछ कुछ छोटा मोटा ज्ञान तो रहता ही है कि हाँ भगवान कृष्ण भगवान है और ये और वो, लेकिन जब तक हम अधिकारी गणों से जो कि भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं उनसे नहीं सुनेंगे तब तक स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग या समझ हमको नहीं प्राप्त होगी.
Therefore, in the very, very beginning of the Srimad Bhagavatam, in the first verse, the very first line.
इसीलिए श्रीमद् भागवतम के बिल्कुल शुरुआत में सबसे पहले श्लोक की पहली लाइन में.
The very first line it says that I meditate upon Bhagavan Shri Krishna Vasudev.
उसमें कहा गया है कि मैं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव पर ध्यान लगाता हूँ.
Because Krishna, he is the absolute truth.
क्योंकि वे ही परम सत्य हैं.
So this is the very, very, very beginning understanding of this book, the Srimad Bhagavatam, that Krishna is the absolute truth.
और यही तो ये कृष्ण भगवान परम सत्य हैं, इस ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की शुरुआती समझ है.
What does that absolute truth mean?
परम सत्य का क्या अर्थ है?
Absolute means that which is perfectly pure.
परम शब्द का अर्थ है वह जो पूर्ण रूप से शुद्ध है.
It means that which is perfectly complete.
जो पूर्ण रूप से पूर्ण है.
So the Bhagavatam begins by saying that we meditate upon Krishna because he is the most perfect, complete thing that there is.
भागवतम शुरू करता है ये कहकर कि हम भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाते हैं जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध और पूर्ण रूप से पूर्ण व्यक्ति हैं।
And he is the cause of all causes of everything that's created, everything that's maintained, and everything that's destroyed.
और वे सभी कारणों के कारण हैं, उन सभी चीजों की जो जिनकी सृष्टि हो चुकी है, उनकी जो हो रही है और उन उन जो चीजें जिनकी जो अभी ठीक हैं और जिनका विनाश हो रहा है, उन सभी का भगवान ही कारण है।
So the Srimad Bhagavatam begins, excuse me, in the very beginning, establishing that Krishna immediately, right away, it doesn't go around different circles and come up with different ideas and stories. It immediately starts off by telling us that Krishna is the seed-giving father.
Srimad Bhagavatam mein koi idhar udhar ki baat nahi ki gayi hai. शुरुआत में ही पहले श्लोक के द्वारा ही बता दिया गया है कि कृष्ण ही बीज दाता पिता हैं, कोई कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है।
So automatically our foundation is completely established.
तो हमारी जो नींव है, जो हमारी बुनियाद है, वो यहीं से शुरू है, भागवतम के पहले श्लोक से ही।
It's just like if you go to a university to study a particular subject, first you look at the university, you look at the idea that that university has and who the professors of that university are that are working there, what that university is teaching, so that you can then think, you can decide, do I want to attend this university or not? Does it give the information that I want to learn?
ये उसी प्रकार है कि जिस प्रकार आप किसी विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पहले जाके थोड़ी तहकीकात करते हैं कि वहाँ के लेक्चरर कैसे हैं, पढ़ाई होती भी है कि नहीं, लेक्चर दिए भी जाते हैं कि नहीं, और देते भी हैं तो किस चीज के ऊपर देते हैं। तो ये सब चीजें तहकीकात करने के बाद आप निर्णय लेते हैं कि वास्तविकता में आप उस विश्वविद्यालय में दाखिला लेंगे कि नहीं।
And when we understand the credentials and the qualities and the qualification of the particular school, we can decide if this is the school I want to study at.
और पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद कि वास्तविकता में क्या ये विद्यालय मेरी अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है कि नहीं, क्या इसमें इसको मान्यता प्राप्त है, उसके बाद ही हम उसमें दाखिला लेते हैं।
So similarly, if you are interested in knowing your original source and who your true father is, the Bhagavatam begins right there at the very first line. This is what we teach here.
उसी प्रकार से जिस प्रकार आप दाखिला लेने के लिए इतनी रुचि रख रहे थे, अगर आपकी वास्तविकता रुचि है ये जानने की कि आपके वास्तविक पिता कौन हैं, आपके बीजदाता पिता कौन हैं, तो भागवतम के पहले श्लोक की पहली लाइन में ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसी विषय की चर्चा होती है।
So this is the blessing of the Srimad Bhagavatam, and this is the particular, it affords us in this human form of life to understand who our Father is, so that we can turn our attention to our Father, listen to our Father's instruction, and receive benedictions in life for our ultimate good.
So, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है श्रीमद् भागवतम का, कि इस मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं कि हमारे वास्तविक पिता कौन हैं, जिसके द्वारा हम अपना ध्यान उनके प्रति केंद्रित करें, उनकी शिक्षाओं को स्वीकार कर सकें और उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, ताकि हमारा वास्तविक कल्याण हो सके।
The only business of the Srimad Bhagavatam is to help us become devotees of our father.
केवल एक ही मात्र भागवतम का उद्देश्य यह है कि हमें मदद करे कि हम अपने पिता के भक्त बन सकें।
Because it only is full of all the descriptions of the activities and events and life of our father.
क्योंकि भागवतम में बहुत ही सुंदर तरीके से विवरण दिया गया है हमारे वास्तविक पिता भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का।
And Krishna himself, he says that one who understands my birth and my activities never takes birth again in this world.
और भगवान कृष्ण ने स्वयं घोषित किया है कि जो ये समझ जाता है मेरे कार्यों को और मेरे जन्म को तो वापस से उसका इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं होता.
So by hearing the Srimad Bhagavatam, we're able to separate ourselves from the animal form of life and raise ourselves up, uplift our lives to become situated back with our original father.
और तो इसीलिए कि भागवतम के शरण में जाने के द्वारा हम अपने आप को पशु वृत्ति से अलग कर सकते हैं, अपनी चेतना को ऊपर ऊपर उठा सकते हैं कि हम भगवान के पास वापस जा सकें.
Because the Bhagavatam, by hearing the Bhagavatam and the glories of the Lord, it takes away all of the animal propensities out of our heart and our brains.
भागवतम को श्रवण करने से हमारे अंदर जितनी भी पशु वृत्तियां हैं उन सब का विनाश हो जाता है.
The body basically is animalistic, it's flesh. So when we come out of the womb of our mother, it is natural that we have animalistic nature, that we act like pashu when we come out of the womb.
क्योंकि ये शरीर हार्ड मास का बना है तो इसमें पशु वृत्तियां होती हैं. जब हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से पशु रूप में कार्य करता है.
As soon as we come out of the womb, we like animals, we smell where is the food, we listen to some sounds that we can follow for our instinct for in order to reproduce ourselves.
गर्भ से जन्म लेने के बाद हम पशुओं की तरह ही आचरण करने लगते हैं, सूंघते हैं कि कहाँ पे खाना है, या कानों में कोई आवाज सुनते हैं तो उस चीज अपने जो स्वाभाविक
outside which satisfy our eye, our tongue, our nose, our ears, and our touch.
वास्तविकता में पशु वृत्ति का अर्थ यह है कि जो बाह्य चीजें जिसके द्वारा हमारी इंद्रियों को संतुष्टि प्राप्त हो, आंखें, जीभा, कान, स्पर्श इंद्रियां और सूंघना.
And as we go through life nourishing these senses, then what happens is that we create a mindset so that when this body is over, then we just take another body and do the same thing over and over continually, lifetime after lifetime.
तो इसी प्रकार से जब हम इंद्र तृप्ति और इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं पूरे जीवन भर, तो हमारे मन में इस प्रकार का एक माइंडसेट इंप्रेशन छप जाता है, तो जिसके द्वारा जब शरीर बदलते हैं तो दोबारा से फिर उसी तरह से कार्य करते हैं, दोबारा इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय संतुष्टि, फिर एक के बाद एक हर जन्म में जन्म पर्यंत जन्म यही करते रहते हैं.
But Krishna says that if you hear about my nature, if you hear about me, that I am your seed giving father, then you will start to think that I have another interest outside of the animal interest.
परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं, परंतु अगर आप मेरे विषय में सुनेंगे, ये सुनेंगे कि मैं आपका बीजदाता पिता हूं, तो फिर आप समझ पाएंगे कि आपका एक और भी रुचि है, एक और भी आपका स्वार्थ है जो कि पशुओं के स्वार्थों से भिन्न है.
And so this is Krishna says that by hearing about me, then you will stop the inclination, the desire to move in the animal way, and you will then desire to move towards me in the spiritual way, and then you won't have to take birth or death again in this world.
तो भगवान बता रहे हैं कि अगर आप मेरे विषय में सुनेंगे तो फिर जो आपका पशु वृत्ति है, पशुओं के समान आचरण करने की वृत्ति है, उसको आप रोकेंगे, रोक पाएंगे और मेरे प्रति अग्रसर होने की वृत्ति आपके अंदर विकसित होगी.
So the spiritual master is a person who's working on Krishna's behalf, giving us the idea about Krishna, given us the vision so that we can have the darshan, we can see Krishna through hearing, and then we can understand how wonderful it is to want to accept this idea that Krishna is the seed-giving father.
और जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो कृष्ण के द्वारा नियोजित प्रतिनिधि हैं जो कि हमें भगवान के संदेश को दोहराते भगवान का संदेश हमको सुनाते हैं और ये हमें आइडिया देते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान के प्रति अग्रसर हो सकें और फिर हमें इस चीज के बहुत रुचिकर लगता है और हम भगवान के प्रति अग्रसर होने को ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं
सो ultimately by the regular hearing of the message of Shukadev Goswami in the Srimad Bhagavatam, then the propensity to become Pashu is taken out of the heart. Gradually, it starts to move out of the heart. And then the propensity to serve and love the Lord awakens inside of the soul.
तो अंत में निष्कर्ष यही है कि जब हम भागवतम के संदेश को सुनते हैं और सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा दिए गए इस ज्ञान का श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय से पशु वृत्ति समाप्त होने लगती है और भगवान की सेवा और भगवान को प्रेम करने का जो भावना है वो जागृत होती है जीव के हृदय में
सो द स्पिरिचुअल मास्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुखदेव गोस्वामी बिकॉज़ ही इज गिवन अस द इंफॉर्मेशन अबाउट Lord Krishna is handed down from Shukadev Goswami, and therefore the spiritual master is our natural spiritual father that blesses us.
तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो शुकदेव गोस्वामी जी के प्रतिनिधि हैं, और वो शुकदेव गोस्वामी जी के संदेश को हम तक पहुंचाते हैं, और इसलिए वो स्वाभाविक रूप से हमारे आध्यात्मिक पिता हैं.
He blesses us through the training process. Of hearing about Lord Krishna, and then by this hearing about Lord Krishna, our hearts become very, very happy, our soul and our spirits become very, very satisfied, our minds become peaceful, we're not agitated anymore to act like a pashu, but we become like devas, devotees of the Lord, and ultimately we return home back to Godhead.
Our आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों को यह आशीर्वाद देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने का प्रशिक्षण देते हैं और इस श्रवण के माध्यम से जीव का जो हृदय है वो पशु वृत्ति से शुद्ध हो जाता है जिसके द्वारा वो हमेशा वो कुंठा और चिंता में रहता है और इससे मुक्त होने के बाद जीव हमेशा खुश रहता है उसके हृदय में प्रसन्नता अनुभव होती है और वो वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है
सो लेट्स एंड द क्लास बाय अगेन रिपीटिंग द ट्रांसलेशन हियर पुरु रिप्लाइड ओ योर मैजेस्टी हु इन दिस वर्ल्ड
इस जगत
कैन रिपे हिज डेट टू हिज फादर बाय द मर्सी ऑफ वन्स फादर वन गेट्स द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ which can enable one to become an associate of the Supreme Lord.
तो यहाँ पर हम कक्षा को विराम देंगे एक बार इस अनुवाद को दोबारा से दोहरा कर तो आप पीछे पीछे दोहराइएगा पुरु ने उत्तर दिया हे महाराज ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के ऋण से उऋण हो सके मनुष्य को पिता की ही कृपा से मानव जीवन प्राप्त होता है जिससे वह भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है
सो इन कंक्लूजन लेट अस वर्क टुगेदर very, very carefully to help one another every day hear about the glories and the wonderful pastimes of Bhagavan Shri Krishna as described in the Srimad Bhagavatam.
तो निष्कर्ष में यह कहना चाहूंगा कि हम सब बहुत ही ध्यान पूर्वक एक दूसरे की मदद करें, जिस प्रकार ताकि हम श्रीमद् भागवतम का ये जो संदेश है और भगवान श्री कृष्ण का ये जो गुणगान है इसको हम सुन सकें, इसके लिए हम एक दूसरे की मदद करें।
Is that okay? बोल गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, बोल कृष्ण भगवान की जय।
His grace दीनानाथ प्रभु की।